पिछले भाग में आपने देखा, अब वे यहाँ आ रहा है तो कुछ बड़ा प्लान करके ही आ रहा होगा। हमें पहले से ही उसके हर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। अमन की बात सुनकर रुद्र अपने चेहरे पर खतरनाक स्माइल लिए बोला, अगर वे आ रहा है तो आने दो, उसे जो कुछ भी प्लान करना है करने दो, क्योंकि वे कुछ भी कर ले, वे रुद्र सिंघानिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा की तरह वे फिर से हार कर यहाँ से वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का किंग सिर्फ और सिर्फ रुद्र सिंघानिया ही है, और उसकी जगह कोई ले पाए आज तक वे इंसान पैदा नहीं हुआ। इतना बोल उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। चैप्टर 101। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रूही और परी अपनी क्लास में बैठी हुई थी। निहारिका की वजह से दोनों का मूड ऑफ था। तभी क्लासरूम में लगे माइक में ये अनाउंस होता है कि क्लास के सभी बच्चे फील्ड में आ जाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। माइक में लगी आवाज़ जैसे ही क्लास के सभी स्टूडेंट सुनते हैं, वे खुश हो जाते हैं कि आज उन्हें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऊपर से अगर अनाउंसमेंट हो रही है तो कुछ मज़ेदार ही अनाउंस होगा। ये बात सोचते ही सारे स्टूडेंट अपनी फुर्ती दिखाते हुए तुरंत क्लास से गायब हो जाते हैं। वहीं रूही जब सभी स्टूडेंट को इतनी जल्दी जल्दी जाता हुआ देखती है तो परी को देख पूछी, परी ये सब इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हैं, जैसे यहाँ अनाउंसमेंट न होकर उनकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। रूही की बात सुनकर परी हंसते हुए कहती हैं, हाँ लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, चल हम भी देख कर आते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट होने वाला है जिसके लिए लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं। परी की बात सुनकर रूही भी हाँ में सर हिलाते हुए परी के साथ चली जाती है। फील्ड में एक बहुत बड़े फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट जमा हुए थे, तभी वहाँ पर रूही और परी भी आ जाते हैं और इतना सारे स्टूडेंट को देखकर वे दोनों फिर से हैरान हो जाती हैं। पर अभी वे एक दूसरे से कुछ भी कह पाती तभी हॉल में प्रोफेसर आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट को देखते हुए बोले, हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस कॉलेज के लगभग 50 साल पूरे होने वाले हैं और उसी खुशी में हमेशा की तरह कॉलेज में अलग अलग तरह के प्रोग्राम होने वाले हैं और जो भी उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा और जीतेगा उसे इस कॉलेज की तरफ से 50 लाख की धनराशि इनाम में दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग उसी एनर्जी और उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। गुड लक ऑल स्टूडेंट। इतना बोल वे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैसे ही स्टूडेंट ये सुनते हैं कि इस बार जीतने पर 50 लाख की प्राइज मनी दी जाएगी, सारे स्टूडेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं रूही के कानों में भी जैसे ही ये बात जाती है कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने पर जो जीतेंगे उन्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे, रूही की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे परी को देख खुश होते हुए बोली, परी सुना तूने, जो भी इस कॉम्पिटिशन में जीतेगा उसे 50 लाख मिलेगा। मैं भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी और देखना कि ये कॉम्पिटिशन भी मैं ही जीतूंगी। इतना बोल वे काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं रूही को इतना खुश देख वे रूही के कान के पास जाकर धीरे से बोली, रूही तू सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए खुश हो रही है? अरे तुझे नहीं पता कि तू एक बिलियनर की वाइफ है? अगर तू भाई से 50 लाख क्या 50 करोड़ भी मांगेगी ना तो भाई खुशी खुशी तुझे दे देंगे। परी की बात सुनकर रूही मुँह बनाकर बोली, तू चुप कर, भले ही तेरा भाई बिलियनर हो पर मुझे पता है वे मुझे अपने पैसों में से 1 रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि वे नहीं चाहता कि मैं उसके पैसे खर्च करूँ। तुझे पता है जब मैंने पहली बार कुकिंग की थी और सबने मुझे ढेर सारे गिफ्ट दिए थे और तुझे पता है मैं वे गिफ्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई थी, पर तुझे नहीं पता रूम में जाते ही तेरे उस शैतान भाई ने मेरे साथ क्या किया। इतना बोल वे उदास हो जाती है। वहीं रूही की बात सुनकर परी बोली, क्या किया मेरे उस शैतान भाई ने? परी की बात सुनकर रूही गुस्से में बोली, तेरे उस शैतान भाई ने मेरे हाथों से सारा गिफ्ट छीन लिया और बोला कि मैं इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं पहन सकती, बल्कि अगर कोई दोबारा मुझे इस तरह से गिफ्ट देगा तो भी मैं उसे नहीं ले सकती। अब तू ही बता कि इसका क्या मतलब है? तेरा भाई मुझे सीधे सीधे ये बता रहा था कि उसके उस घर में या उसके घर की चीज़ों में मेरा कोई हक नहीं है, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए शादी की है। रूही की बात सुनकर परी उसे समझाते हुए कहती है, रूही ऐसी बात नहीं है, भाई का भी मतलब नहीं होगा जो तू समझ रही है। परी की बात सुनकर रूही बोली, परी मुझे पता है कि वे तेरा भाई है और इसीलिए तुझे वे सही लग रहा है, पर अब मैं तेरे उस शैतान भाई के बारे में और बात कर अपना मूड खराब नहीं कर सकती। चल पहले हम फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोल वे परी का हाथ पकड़ फॉर्म फिल करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में देवांश पूरी तरह से रेडी होकर रूम से बाहर आता है तो देखता है कि दिशा वहीं हॉल के सोफे पर बैठी फाइल चेक कर रही है, जिसे देख देवांश दिशा के पास आते हुए बोला, मिस दिशा मीटिंग के लिए चले? देवांश की आवाज़ सुन दिशा देवांश को देखती है, फिर हाँ में सर हिला देती है और फाइल बंद कर देवांश के साथ जाने लगती है। तभी उसका मोबाइल रिंग करता है जिसे देख वे कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव करते ही उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर दिशा ओके बोल कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही दिशा को देख देवांश बोला, क्या हुआ मिस दिशा, किसका फोन था? देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, सर वे कुछ इमरजेंसी की वजह से आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसीलिए अब वे मीटिंग कल होगी, अब हमें यहाँ एक दिन और रुकना होगा। इतना बोल वे थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वे यहाँ देवांश के साथ अकेले नहीं रुकना चाहती थी, पर अब वे पीछे भी नहीं हट सकती थी। वहीं दिशा की बात सुनकर देवांश बोला, कोई बात नहीं मिस दिशा, जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक काम करते हैं, हम कहीं घूम कर आते हैं। वैसे भी काम के बीच मुझे कहीं घूमने का टाइम ही नहीं मिलता। देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, जी सर, आपको कहीं घूम कर आना चाहिए। वैसे भी आपको काम के अलावा कुछ नहीं दिखता। आप घूम कर आएंगे तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप चले जाइए, मैं रूम में ही रहूंगी और कल की मीटिंग के लिए और अच्छे से तैयारी कर लेती हूँ, जिसकी वे डील हमें ही मिले।
दिशा की बात सुनकर देवांश को काफी गुस्सा आता है। कहाँ वे इस लड़की को घुमाने की बात कर रहा है और कहाँ ये लड़की फालतू की बात लेकर बैठ गई। बस यही वजह है जिस वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपनी गुड गर्ल पर गुस्सा आ जाता है।